हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। राजवीर अरमान की कंपनी में पहुँच चुका था और राजवीर सिंघानिया को देखकर अरमान ने जानबूझकर अपनी कंपनी में सबके सामने बहुत बड़ी पार्टी अनाउंस कर दी थी। इतना ही नहीं, उसने अपने सभी वर्कर्स को डबल बोनस देने का फ़ैसला कर लिया था। उन सब की सैलरी दोगुना कर दी थी। अरमान को तो यकीन हो ही चुका था कि ये प्रोजेक्ट किसी और को नहीं बल्कि उसके कंपनी को ही मिलेगा। राजवीर भी मुस्कुराता हुआ उसके पास गया था। राजवीर को वैसे प्रोजेक्ट से लेना देना नहीं था, वो तो केवल अरमान को हराना चाहता था। वो अरमान और मेहर का सर झुकते हुए देखना चाहता था। उन दोनों की आपस में मेल ईगो की लड़ाई थी। उसे अपने सामने झुकाना चाहता था तो वो उसे दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। राजवीर ने अरमान से कहा था, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुमने जानबूझकर मेरे सामने पार्टी अनाउंस क्यों की है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये पार्टी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ को मिलेगा और किसी को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। राजवीर ने अपनी बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंटेशन तैयार करवाई थी। उसने जो अपनी कोटेशन रखा था वो बहुत ही ज़्यादा लो रखा था, क्योंकि उसे लॉस की कोई चिंता नहीं थी, उसे सिर्फ और सिर्फ वो प्रोजेक्ट चाहिए था जो वो किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। उसने फैसला कर लिया था और अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी ऑफिस में हलचल सी सुनाई देने लगी थी। जल्दी ही कहीं से आवाज़ आने लगी थी कि विदेशी सीईओ साहब आ गए हैं, विदेशी सीईओ साहब आ गए हैं। तभी राजवीर और अरमान और बाकी की पांच कंपनियां जो कि उसे प्रोजेक्ट को पाने की होड़ में थी, वो सभी के सभी उनका स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही उन्होंने देखा, एक बड़ा ही खूबसूरत सा बंदा, एकदम स्मार्ट ड्रेसिंग, ब्लू कलर के कोट पहने हुए, एकदम चमकदार जूते पहने हुए, बड़े ही स्टाइल से चलता हुआ अरमान की कंपनी के अंदर आ रहा था। उसके आगे पीछे कम से कम 7 से 8 बॉडीगार्ड थे। उस विदेशी आदमी का चेहरा एकदम डैशिंग लग रहा था। अरमान और राजवीर के साथ आई हुई लड़कियां सभी उसी की ओर देखने लगी थीं, क्योंकि वो देखने में बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग था। और जैसे ही मेहर ने में भी उसकी ओर देखा तो वो भी उसे देखते रह गई थी और सोचने लगी थी, इसे फंसाना इतना भी मुश्किल नहीं होगा, और इस बार अगर ये आदमी मेरे साथ बेड में आ जाए तो शायद मेरी भी किस्मत चमक उठेगी। मेहर सोचने लगी थी, आज तक कंपनी को प्रोजेक्ट दिलाने के लिए कितने ही वो कभी अधेड़ उम्र के व्यक्तियों के साथ, कभी कालों के साथ, कभी पीले काले पीले आदमियों के साथ उसने रातें गुजारी थी, लेकिन अगर आज इस कंपनी इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए उसे इसके साथ रात गुजारना पड़ जाए तो ये उसके लिए किस्मत की बात होगी, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा डैशिंग था। मेहर ने तो सोच लिया था, प्रोजेक्ट मिले या ना मिले, लेकिन वो इस पर ट्राई ज़रूर करेगी। वल जल्दी ही अरमान ठाकुर ने उस विदेशी आदमी का फूलों से मालाओं को पहनकर स्वागत किया था और उसे कितने कितने ही खूबसूरत से बुके वगैरह दिए थे। सभी ने अलग अलग बुके वगैरह दिए थे। जितने भी कंपनी के वहाँ उस वक्त लोग मौजूद थे, उस विदेशी आदमी ने सभी बुके एक एक करके अपने एक साथ आए हुए गार्ड को दे दिए थे। और फिर वो लोग जल्दी ही सबके सारे कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए थे, जो कि मीटिंग का रूम था। तब अरमान ने उसे कहा था कि सर, आप इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं तो मैंने आपके खाने पीने के लिए कुछ इंतजाम किए हैं, तो पहले आप कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ले लीजिए, उसके बाद हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। राजवीर ने भी अरमान की बात में हाँ में हाँ मिला दी थी और साथ ही साथ आए हुए पांच कंपनियों के ओनर ने भी हाँ मिला दी थी और कहा था, जी सर, आप थक कर आए होंगे तो आप पहले कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर वो विदेशी आदमी हंसने लगा था और बोला था, डोंट वरी, आप लोग मेरे खाने पीने की चिंता मत कीजिए, मैं ऑलरेडी प्लेन से ब्रेकफास्ट करके आया हूँ, तो उसका कोई इशू नहीं है। और रही बात इस कॉन्ट्रैक्ट की, तो अभी आप लोग सबके सब मुझे अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ दिखा दीजिए और उसके बाद हमारे सीईओ यहाँ आएंगे और वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे। क्या? या। जैसे उन लोगों ने ये सुना कि उसी कंपनी के कोई और सीईओ हैं जो वहाँ आने वाले हैं, तो वो हैरान रह गए थे। और अरमान अपने आप को रोक नहीं पाया और बोला था, ये आप क्या कह रहे हैं, क्या आप विदेशी कंपनी के सीईओ नहीं हैं? तब उसे आदमी ने नामे गर्दन हिला दी थी और बोला था, नहीं मिस्टर ठाकुर, मैं सीईओ नहीं हूँ, बल्कि मैं उनका सेक्रेटरी हूँ और मैं यहाँ पर सबसे पहले अरेंजमेंट वगैरह चेक करने के लिए आया था कि कहीं यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और मुझे ऑर्डर दिया गया है कि मैं सभी कंपनियों की प्रेजेंटेशन चेक कर और उन्हें अपने अंडर में ले लूँ, उसके बाद रिजल्ट हमारे सीईओ खुद कर यहाँ पर अनाउंस करेंगे। ये बात सुनते ही और राजवीर सिंघानिया समेत सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। उन्हें तो लगा था कि सीईओ यही है, लेकिन जैसे ही ये मुझे पता चला ये सीईओ नहीं था बल्कि सीईओ का सेक्रेटरी था, तो उनके हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। और तभी मेहर सोचने लगी थी एक मामूली से सेक्रेटरी की इतनी ठाट पाट होंगे। तो उस विदेशी लड़के के को लेकर कुछ भी मेहर सोच रही थी उसने जल्दी ही अपनी सोच को झटक दिया था, क्योंकि वो एक मामूली सेक्रेटरी के साथ तो रात नहीं बिता सकती थी ना। वल जल्दी ही, क्योंकि सीईओ का हुक्म था तो जल्दी ही सभी कंपनियों ने अपने अपने प्रोजेक्ट से जो भी वो तैयार करवा कर आए थे कोटेशन समेत उस विदेशी लड़के को थमा दिए थे। तब उसे विदेशी लड़के ने कहा था कि मुझे ये सब कुछ चेक करने में आधा घंटा लगेगा, तो तब तक आप लोग बाहर इंतजार कर सकते हैं। जैसे ही उसने ये इशारा किया सभी के सभी वहां से निकलकर बाहर चले गए थे और हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे थे। वहीं राजवीर अरमान की शक्ल देखकर मुस्कुराने लगा था और बोला था, वो क्या स्वागत किया है अपनी कंपनी विदेशी सीईओ का, मजा आ गया। ये बात सुनते ही सभी हंसने लगे थे, क्योंकि राजवीर सीधे सीधे तरीके से अरमान का मजाक उड़ा रहा था। तब अरमान भी खुद को रोक नहीं पाया और बोला था, अच्छा अगर मुझे गलत फहमी हो गई थी तो तुम लोगों का क्या, तुम लोगों को भी तो गलत फहमी हो गई थी ना, तुम लोग भी तो उसे ही विदेशी सीईओ समझ बैठे थे। फिर अरमान का जवाब सुनकर वो सब भी चुप हो गए थे, क्योंकि सबकी गलती थी, सबने ही गलत फहमी का शिकार हो गए थे। क्योंकि वो सेक्रेटरी आ ही इतनी ठाट बाट से रहा था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं का राजा आ रहा हो। वल आधा घंटा बीत चुका था। जल्दी ही उस विदेशी सेक्रेटरी ने उन सभी को वहां बुला लिया था और कहा था कि मैं कंपनी की सारी जितने भी ये प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने मुझे सबमिट कराए थे मैंने एक एक करके सभी हमारे सीईओ को ईमेल कर दिए हैं, तो वो सब कुछ चेक कर रहे हैं और बहुत जल्द आकर वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे। ये बात सुनते ही सभी हैरान रह गए थे। तब अरमान ठाकुर बोला था, आखिर है कौन ये विदेशी सीईओ, क्या वो यहाँ पर आकर डिटेल चेक नहीं कर सकते हैं? हम लोग भी तो अपना काम छोड़कर उनके यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। हम मानते हैं कि आपके सीईओ अरबोपति और हमसे कहीं ज्यादा बड़े हैं, हमसे कहीं ज्यादा गुनी आप लोगों के पास दौलत है, पैसे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग इज्जत नहीं रखते हैं। हम लोगों ने उस विदेशी के स्वागत के लिए कितनी तैयारी की थी, लेकिन उन्होंने इस तरह से यहाँ पर ना आकर हमारी बेइज्जती की। अरमान ठाकुर की बात सुनकर वो सब जितने भी लोग थे सभी हाँ में हाँ मिलाने लगे थे, लेकिन राजवीर सिंघानिया चुपचाप बैठा हुआ उन सबकी बातें को सुन रहा था, उसे उन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
वेल, तभी वो सेक्रेटरी बोला था, आप लोग गलत समझ रहे हैं, आप लोगों ने मुझे विदेशी सीईओ समझा, इसमें आप लोगों की गलतियां हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। वेल, मैंने कहा ना कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर विदेशी सीईओ खुद आ रहे हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस आते ही होंगे। तब वैसे भी तब वो सेक्रेटरी बोला था, ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है, हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है जो आप लोगों की सोच से काफ़ी परे है, ये किसी भी कंपनी को रातों रात इस देश के नंबर वन कंपनी बना सकता है, आप इस प्रोजेक्ट की शायद वैल्यू नहीं जानते हैं। उसे विदेशी सेक्रेटरी की बात सुनकर वो सब लोग चुप हो गए थे, क्योंकि वो विदेशी सेक्रेटरी जो कुछ भी कह रहा था वो बिल्कुल सच कह रहा था, और उन लोगों के पास एक्चुअल को वेट करने, इंतज़ार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वेल, अभी थोड़ी देर ही गुजारी थी कि तभी सेक्रेटरी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है और वो कहते हैं, मुबारक हो, हमारे सीईओ साहब इस कंपनी में एंटर कर चुके हैं, वो कभी भी किसी भी पल इस कमरे में आ सकते हैं। जैसे ही उन लोगों ने सुना वो हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे थे।